भाव दीपिका लेक्चर नंबर 9 ओम नमः पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल रचित यह भाव दीपिका नामक ग्रंथ है, जिसमें जीव के 5 असाधारण भावों का वर्णन है। ये भावों का वर्णन तो उनके नाम हमने देखे थे, यहाँ तीसरा जो कर्माधिकार है उसकी बात चल रही है, क्योंकि ये जो सारे भाव है उसमें जो कर्मों के निमित्त है पर्याय रूप भावों में, इसलिए यहाँ कर्मों के नाम बता रहे हैं और उसका साधारण स्वरूप क्या है उसकी बात अपनी चल रही है। 19 नंबर के पृष्ठ पर हम आए हैं। नाम कर्म के जो अलग अलग भेद है उसमें से हमने पहले पिंड प्रकृतियां देखी थी, याद है कौन सी? थोड़ी थोड़ी बोल। गति, चार गति होती है। हाँ, जाति में एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि, वो 5 जाति है। शरीर 5। हाँ, संस्थान लिया,
बंधन,
अंगोपांग लिए पहले,
और
अनुकूली तो आगे है। हाँ, विहाय गति। देखो, गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, सहन, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, विहाय गति और अनुकूल, ये 14 जो है वो पिंड। पिंड ने एक से ज्यादा उसमें प्रकृति है। आपने पढ़ा क्या पंचलब्धि पुस्तक में प्रकृतियों के नाम? पढ़े नहीं? पढ़े, अभी यहाँ चले गए तो हम 19 पेज तक आ गए हैं। तीसरी लाइन में यहाँ पर्याप्त नाम कर्म से शुरू करेंगे। उसमें से एक पुस्तक लेके बैठना बेटा, पढ़ने को आता है ना, वो हिंदी वाला ले लो ऊपर का पुस्तक। और 19 नंबर का अभी हम पढ़ेंगे तीसरी लाइन में।
मोबाइल की फोन करो छो ना, मोबाइल की फोन करो छो।
पर्याप्त नाम कर्म के उदय ते, ये ढूंढारी भाषा है, फिर भी आप हिंदी में पढ़ना बराबर, हाँ आपको हिंदी में पता चलेगा। पर्याप्त नाम कर्म के उदय ते, ये यहाँ जो अलग अलग नाम कर्म के जो नाम बताएंगे उसका उदय होता है तब जीव के साथ क्या निमित्तपना बनता है उसकी बात चल रही है। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय ते जीव अपने योग्य 4 व 5 व 6 पर्याप्ति पूर्ण करे। देखो, जब जीव कहीं से मरकर अन्य भाव में चला जाता है तो वहां शरीर की रचना होती है, तो शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके उसको शरीर रूप ढाला जाता है, तो उसमें जीव में ऐसी कुछ योग्यता उत्पन्न होती है, शक्ति हम कहेंगे उसको, उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां तो कोई रेडीमेड शरीर नहीं होता है। जीव मरकर अन्य भाव में जाता है तो वहां कोई रेडीमेड शरीर तो है ही नहीं है। जीव पूर्व भाव से कारमान शरीर, उसके कर्म साथ में आए हैं, तो उस कर्म के विशिष्ट कर्मों के उदय से वहां शरीर की रचना होती है। तो यहाँ 4, 5 या 6 क्यों कहा मिली भाई?
पर्याप्त जो
पर्याप्त नाम कर्म के उदय से। हाँ, अपर्याप्तों की भी पर्याप्ति इतनी होती है परंतु वो तो पूर्ण नहीं होता। हाँ, मेरा प्रश्न का उत्तर ये है, एक इंद्रिय के चार पर्याप्ति होती है,
दो इंद्रिय से अस्सी इंद्रिय
तक पांच होती है, संगी पंचेंद्रिय के छह होती है। पर्याप्त को क्यों कहा, अपर्याप्तों की भी पर्याप्ति तो उतनी होती है। शांति रखो भैया। सुनो सुनो, हाँ अभी अपने पुस्तक में ध्यान देना, दूसरे की तरफ नहीं। अपूर्ण काल में मरे नहीं, यानी अपर्याप्त अवस्था में मरेगा नहीं, वो पर्याप्ति पूर्ण होगी और यथा योग्य जितनी आयु लेके आया है, या पर्याप्त कदली घात से भी मरण होना हो तो भी पर्याप्त होने के पश्चात होता है। अब जैसे पर्याप्त नाम कर्म है, किसी के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय तई जीव अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण न करे। अपने योग्य यानी जो अभी हमने देखे, एक इंद्रिय के तो चार होती है, द्विंद्रियादि असंगी तक तो पांच होती है, और संगी पंचेंद्रिय को छह होती है, तो ये पूर्ण नहीं होती। यहाँ उन्होंने लिखा है शरीर पर्याप्ति यानी दूसरी पर्याप्ति पूर्ण न कर सके, परंतु सच में ये बात है कि एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसके पहले ही मरण हो जाता है, बीच में ही मरण को प्राप्त हुए, सो लब्धि अपर्याप्त जीव कहिए। उसको क्या कहेंगे, लब्धि अपर्याप्त जीव, यानी उनकी आयु कितनी बहुत अल्प होती है, जिसको हम श्वास का 18वां भाग कहेंगे, हमने हिसाब लगाया था ना, सेकंड का भी 24वां भाग, इतना एक भव। सुस्वर नाम कर्म के उदय तई संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवन के सुहावनो शब्द होए, वचन परिणति मनोज्ञ हो। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है देखो स्वर यानी भाषा किस किस के होते हैं, द्विंद्रिय को, तीन्द्रिय को, चतुरिंद्रिय को, असंगी को, संगी को, परंतु द्विंद्रिय आदि को कैसे हो गए, दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा। संगी पंचेन्द्रिय को दुस्वर भी हो सकता है, सुस्वर भी हो सकता है, परंतु सुस्वर किसको होगा, मात्र संगी पंचेन्द्रिय के होगा। ख्याल भैया ये बात, तो सुस्वर नाम कर्म के उदय तई संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव, ये पर्याप्त शब्द डाला, क्योंकि जो लब्धि अपर्याप्त है उसके इसका उदय ही नहीं होगा, वो तो जल्दी मर जाएगा। जीव के सुहावनो शब्द यानी जो भाषा बोलता है उसकी जो ध्वनि निकलती है वो तो सुहावनी होती है। वचन परिणति मनोज्ञ होए, दुस्वर नाम कर्म के उदय तई बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे चार प्रकार त्रस जीवन के असुहावनो शब्द हो, जिसके दुस्वर नाम कर्म का उदय है उसकी जो आवाज हम कहेंगे ध्वनि जो है यानी वो अच्छा नहीं, असुहावना। वचन परिणति अमनोज्ञ हो, प्रत्येक शरीर नाम कर्म, ये शरीर नाम कर्म में दो भेद है, प्रत्येक और साधारण। तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म का जिसको उदय है तो उसके उदय तई जीव प्रत्येक शरीर पावे। ये प्रत्येक शरीर का अर्थ क्या है, एक शरीर का स्वामी एक जीव, जैसे हम मनुष्य है, ये मनुष्य शरीर है उसका मैं एक स्वामी हूँ। इस शरीर के आधार से जीव रहेंगे, उसका वो मनुष्य शरीर नहीं, उनका अपना शरीर अलग है, या कोई वर्म्स रहेंगे, पैरासाइट्स रहेंगे, या निगोज जीव रहेंगे, उनका अपना शरीर अलग है। तो ये जो शरीर है वो मनुष्य शरीर है, उसके आधार से हाँ एक मनुष्य रहेगा, एक जीव रहेगा, उसको कहेंगे प्रत्येक शरीर। एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है, सो प्रत्येक शरीर कहिए। अब किसी किसी को साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होगा, तो जीव साधारण शरीर पावे जो अनंत जीवन का एक शरीर है। क्या कहा, अनंत जीवों के लिए शरीर एक कॉमन, इसलिए उसको साधारण कहेंगे। ऐसे आपको मालूम है साधारण शरीर वाले है? कोई है मालूम है कि नितिन भाई, साधारण शरीर जिनको है, अनंत जीवों में एक शरीर पाया जाता है, निगोच्य निगोच्य ये बटाटा जो है वो जो उसके आधार से निगोच जीव रहते हैं। बटाटे का जो स्कंद है वो प्रत्येक शरीर वाला जीव है, उसके आधार से बादर निगोद रहते हैं, आधार से रहने वाले बादर होते हैं। तो एक बटाटा हो या लहसुन हो, कांदा हो, बीट हो, गाजर हो, तो उसके इतनी सी कटकी में कितने देह होते हैं? शरीर असंख्यात। और एक एक शरीर में अनंत जीव, कितने अनंत, जितने सिद्ध भगवान हुए उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते। तो उनके क्या है? साधारण शरीर नाम कर्म का उदय। पेज नंबर 19। जो अनंत जीवन का एक शरीर हो सो साधारण शरीर कहिए। सो ऐसा शरीर साधारण वनस्पति का निगोद जीवन के हुए है। ये जो निगोद जीव कहो या साधारण शरीर वाले कहो, ये कौन से काय वाले हैं? तो वनस्पति काय वाले। काय की अपेक्षा कितने भेद है जीवों के, याद है? आशा भी आपको मालूम है लक्ष्मी, छह काय याद आए ना? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। ये जो वनस्पति कायिक का अर्थ क्या है? वनस्पति ही जिसका शरीर काया है, जीव का रूप ही है और हमें जो दिखाई देती वो तो काया शरीर है, परंतु ये कैसे है? साधारण शरीर वाले। साधारण शरीर नाम कर्म का उदय इन्हीं के है और के नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये वनस्पति कायिक में दो भेद है, साधारण शरीर वाले, प्रत्येक शरीर वाले, और अन्य जो कोई पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक है और बाकी भी सब, वो कैसे है? तो प्रत्येक जीव प्रत्येक शरीर उनके आधार से निगोद रहे, वो बात अलग है। रह सब साधारण वनस्पति का एक रहते। साधारण शरीर नाम कर्म का उदय इन्हीं के और के नहीं। अब आगे स्थिर नाम कर्म के उदय ते शरीर विषय रस रुधिर, रस यानी वो सफेद लिम्फ कहते हैं मेडिकल में, लिम्फ लिम्फ कहते हैं। जैसे जल गया तो उसमें से पानी आता है ना, खून नहीं आता है, पानी आता है, वो उसको कहेंगे रस। ये अभी जो हम पढ़ेंगे ये शरीर के अवयव है अलग अलग, कौन कौन से? रस रुधिर, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सप्त धातु, इसको धातु कहते हैं सप्त धातु। और वात पित्त कफ शिरा स्नायु चर्म और उदराग्नि, ये सप्त उपधातु, धातु और उपधातु। यथा स्थान स्थिर रहे। देखो क्या होता है कि हर समय शरीर के परमाणु जीव ग्रहण करता है और उसको इन रूप परिणाम आता है। कुछ रस रूप होते हैं, फल रूप होते हैं, तो जो लिक्विड होते हैं उसमें से रस रुधिर होते हैं और जो सॉलिड होते हैं उसमें से बाकी ये ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये रस में से रुधिर, रुधिर में से आगे आगे वाले, वो थोड़े थोड़े दिनों में वो टर्न होते हैं। तो उसी रूप रहना वो स्थिर नाम कर्म के उदय से, और अस्थिर नाम कर्म के उदय से वो अचेंज होगा। तो देखो
ये रस रुधिर आदि जो सप्त धातु होता है,
हाँ,
ये आग में से पानी आता है वो भी रस में गिना जाएगा।
हाँ हाँ, वो उसमें होगा। तो कहते रस रुधिर मांस, ये जो सप्त धातु और सप्त उपधातु यथास्थान स्थिर रहे, तात यानी इसलिए जीव सुखी रहे। और अस्थिर नाम कर्म के उदय तय धातु उपधातु यथा ठिकाने स्थिर न रहे तब जीव दुखी हो। यहाँ सुखी और दुखी बताया है, परंतु ऐसा कहीं कर्णन योग में तो पढ़ने को नहीं आया था। केवल वो तो वो अपने रूप रहता है, फिर इतने दिन के बाद आगे वाले उसमें टर्न होता है, क्योंकि स्थिर और अस्थिर दोनों का उदय चलता है एट ए टाइम। बंद एट ए टाइम एक का होगा, परंतु दोनों का ही उदय हर समय चलता है। ये तो ध्रुवदयी है ना, ध्रुवदयी है। तो उसमें सुख दुख के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है वैसे। नहीं पर उसको पता ही कहाँ चलता है, वो तो अपने रूप रहना रस है, वो रुधिर रूप में रुधिर मध्य, यानी वो एक एक जो हमने क्रम से पढ़े ना वो एक एक है, वो आगे आगे यानी जो परमाणु है पुद्गल परमाणु वो अन्य अन्य रूप टर्न होते रहते हैं, सहज रूप से उसकी ऐसी प्रक्रिया चलती है। वो तो उसमें उसका प्रपोर्शन कम ज्यादा होने से होता है। इसके उदय का वो काम नहीं,
जो स्थिर प्रकृति है वो स्थिर ही रहेगी,
माने ऐसा नहीं है।
अच्छा, वो चेंज होती रहेगी, स्थिर स्थिर स्थिर
दोनों एट ए टाइम चल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि परमाणु कुछ काल तक रस रूप रहे, फिर वही रुधिर रूप हुए, वही आगे के, इस तरह से होता है। ये धातु जो है वो टर्न बाय टर्न आगे आगे उसका परिणमन अलग अलग होता रहता है। तो ये स्थिर का भी कार्य चल रहा है, रस्य का भी कार्य, दोनों का कार्य एट ए टाइम चल रहा है, हर समय दोनों का उदय है, और दोनों के उदय की विच्छित्ति तेरवे में है। ठीक है, उन्होंने लिखा
है ऐसा ही माने कि ये निरोगी वाले को है, ये रोगी वाले को, ऐसा भागा सा
नहीं, नहीं हर समय चल रहा है ना उसका, हर समय उदय चल रहा है। बंद एट ए टाइम एक का होगा, या स्थिर बंधेगा या अस्थिर बंधेगा, उदय दोनों का है। हम निकालना चाहिए तो कर्मकांड में ध्रुवोदय में देखेंगे उसको, दोनों का उदय है कि नहीं। तेरहवें गुणस्थान में बंधे उदय विच्छेद इतना तो नक्की है, कर्म ये बाजू होगी कर्मकांड की पुस्तक। क्या उदय बंध तो चेंज होता रहता है, स्थिर का अस्थिर का छठे तक। डीप ब्लू होगा माघ एक, नीचे नीचे वो राइट साइड से दूसरा तीसरा है। हाँ, कर्मकांड है उदय की बात, कहा उदय वर्णन। यह उदय विच्छित है मगर वो ध्रुवोदयी कहाँ आया था प्रकरण, ध्रुवोदय का, ध्रुवबंदी और ध्रुवोदय का
टेबल भी है।
हाँ हाँ, जीव कांड में नहीं, इसी में है। फिर मैं देख के रखूंगी, कल बताऊंगी। मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि वो ध्रुवोदयी कहाँ पर है? हाँ कल बताऊंगी आप देखना कब मिलता है का। ये उदय का प्रकरण यहाँ है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। हम कहाँ तक आए थे? स्थिर और अस्थिर तक आए थे। हाँ अभी शुभ और अशुभ देखेंगे। शुभ नाम कर्म के उदय तय मस्तक मुख पेट नेत्र नासिका कर्ण हस्त पाद हृदय गुदा पीठ आदि सर्व अंगोपांग शरीर विषय सुंदर हो। यानी जिसको हम कहते हैं सभी सर्वांग सुंदर कहते हैं। अशुभ नाम कर्म के उदय तय सर्व अंगोपांग शरीर विषय असुंदर हो। सुभग नाम कर्म के उदय तय जीव सर्व को सुहावनु लागे असुंदर शरीर व पाप का उदय होते भी सर्वजन प्रीति करे। क्या कहते हैं? तो ये दूसरों को वो अच्छा लगता है। हम कहते हैं कभी कभी काला भी है मगर वो तो लोग मोह। और दुर्भग नाम कर्म के उदय तय जीव सर्व को असुहावनु लागे सुंदर शरीर व पुण्य का उदय होते भी सर्वजन अप्रीति करे। आदेय नाम कर्म के उदय तय शरीर प्रभा यानी कांतिकारी युक्त हो यानी वो तेजस्वी शरीर दिखता है। सर्व आनंद माने आदर करे सत्कार करे। और अनादेय नाम कर्म के उदय तय शरीर प्रभा रहित हो कोई भी आनंद न माने आदर सम्मान न पावे। यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय तय जगत विषय यश हो और अयशस कीर्ति नाम कर्म के उदय तय जगत में पुण्य होते हुए अयश होए। ये नाम कर्म के हमने 93 और यहाँ तो ज्यादा ही बताए थे उन्होंने क्योंकि स्पर्शादि के उन्होंने 20 एक्स्ट्रा लिए थे। और ऐसा अगर हमको देखना है तो पिंड प्रकृति 14 है अपिंड प्रकृति 28 है। कभी हमने पिंड प्रकृति गिनी थी गति जाति शरीर बंधन संघात अंगोपांग संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण विहार गति और अनुभूति। इसके बाद अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास उसके बाद आतप और उद्योग त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ यानी स्थिर अस्थिर शुभ यानी त्रस के साथ भी दो दो लेना त्रस स्थावर बादर और सूक्ष्म प्रत्येक और साधारण पर्याप्त और अपर्याप्त फिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर सुभग दुर्भग आदे अनादेय यशस कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर। तीर्थंकर यहाँ पहले बताए इसलिए नाम कर्म की टोटल हो गई। अब गोत्र कर्म दो प्रकार का है। तहां उच्च गोत्र कर्म के उदय तय जगत विषय जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्म भूमिया मनुष्य। देखो ये ब्राह्मण जाति नहीं है जैसे जैन है ब्राह्मण ऐसा नहीं है ये वर्ण है। पहले के जमाने में चार वर्ण बताए थे क्षत्रिय चतुर्वर्ण क्षत्रिय फिर वैश्य ब्राह्मण और शूद्र ऐसे चार वर्ण थे। उसमें से तीन यहाँ ले लिए गुच्छ गोत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य चार वर्ण चतुर्वर्ण कहते हैं ना वो चार ग्रुप्स बनाए थे। हाँ यानी जिसको अभी वर्तमान में जिसको ब्राह्मण कहते हैं वो तो अलग उसका अर्थ निकालते ना ये ब्राह्मण है और ये जैन है और ये ऐसा नहीं है। मूल में जहाँ ये चार भेद पड़े थे हाँ वो क्या करते हैं उनके व्यवसाय के अनुसार ये बनाए थे। क्षत्रिय तो सैनिक थे राजा थे वो सारे क्षत्रिय गिनते थे। ब्राह्मण यानी जो कुछ शिक्षक केवल नहीं धर्मानुराग रूप जिनकी प्रवृत्ति होती थी वो सारे ब्राह्मण कहलाते। वैश्य में भी वो व्यापारी और बाकी शूद्र में अन्य जो कुछ हीन प्रकार की जाति थी वो शूद्र में मिलते थे। यानी कर्मभूमि मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भेद पड़े, भोगभूमि मनुष्यों में तो सभी लेना वो सारे उच्च कुल वाले, समस्त देव उच्च कुल विषय उपजे हैं। निज गोत्र कर्म के उदयते जीव तीन कुल रहित, ये ऊपर जो तीन बताए ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीन कुल रहित कर्मभूमि मनुष्य, क्योंकि शूद्र भी वो कर्मभूमि में बताएंगे। वा तीर्यंच, सभी तीर्यंच है वो नीच गोत्र वाले हैं, और सभी नारकी ये भी नीच गोत्र वाले। ऐसा कर्म का विधान जानना, हमने आठों ही कर्म और उसके उत्तर भेद देखे। अब कर्म की जय प्रकृति 168 कही, तीन विषय यानी उनमें चार घाती कर्म की प्रकृति हम देख चुके इसको, अभी इसको फिर दोबारा बता रहे हैं। ज्ञानावरण की कितनी देखी हमने, पांच, दर्शनावरण की नौ, मुनि की 28 यानी दर्शन मुनि की तीन और चारित्र मुनि की 25, अंतराय की पांच, सब मिलकर 47। तीनवें सर्वघाती प्रकृति 21। देखो सर्व और घाती अलग अलग लिखा है ना, और घाती का ती दीर्घ की है, वो घाती ह्रस्व चाहिए। सर्वघाती एक शब्द है उसको जोड़कर लिखना। तो सर्वघाती प्रकृति 21। देखो ये जो घाती कर्म है कौन कौन से, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, इसको घाती कर्म कहेंगे क्योंकि जीव के गुणों के साथ इसका संबंध आता है। जितनी जीव की शक्ति है विद्यमान वो प्रकट नहीं हो रही, क्यों, अपने स्वयं का कारण, तो उसमें निमित्त किसको कहेंगे, कर्म को। तो जो पूरा ही घात में निमित्त है यानी उतना प्रकट ही नहीं होते हैं, होने देता अपने प्रतिपक्षी को, उसको कहेंगे सर्वघाती। जो अपने प्रतिपक्षी को थोड़ा प्रकट रहेगा और थोड़ा अप्रकट होगा उसको कहेंगे देशघाती। तो सर्वघाती प्रकृति है 21। ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण और पांच निद्रा। ये पांच निद्रा के नाम बताओ नितिन भाई, ध्यान वृद्धि, ये पांच प्रकार की निद्रा है। मोहिनी की 14, कौन सी 14 है, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यान चार, प्रत्याख्यान चार। और देशघाती प्रकृति है 26। ज्ञानावरण में चार है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण। दर्शनावरण में चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। दर्शन मुनि में सम्यक मुनि और चारित्र मुनि में संज्वलन की चार, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, पुरुषवे श्रीवेद नपुसकवे, और अंतराय की पांच, कौन कौन सी, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ऐसे सर्वघाती देशघाती प्रकृति जाननी। पहले क्या किया, ये जो सभी प्रकृति है उसमें दो भेद किए, घाती कर्म और अघाती कर्म। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोहनी और अंतराय ये घाती है, और वेदनी आयु नाम गोत्र अघाती है। घाती में दो भेद किए, सर्वघाती और देशघाती। अब आगे पढ़ेंगे। इन 168 प्रकृति विषय पाप प्रकृति 100, ये पांच पाप प्रकृति है, पाप और पुण्य के भेद कर्मों में किए हैं। पाप प्रकृतियां, ये प्रकृतियों का पाप और पुण्य भेद है, और जिन परिणामों से ये बनती है उसको भी पाप पुण्य कहते हैं, जीवों के परिणाम। यहां प्रकृतियों को पाप पुण्य बता रहे,
तो
प्रशस्त अप्रशस्त भी कहेंगे उसको, शुभ अशुभ भी कहेंगे। तो 168 प्रकृति में से पाप प्रकृति 100 है, ये जो घातिया थी 47, इसका अर्थ क्या है? घातिया में से एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है, सभी पाप रूप ही है। असाता वेदनीय, नीच गोत्र, नरकायु, क्या कहते हैं? पहले थोड़े थोड़े जो दो दो भेद है उसको पहले बताया, नामकर्म को अलग रखा। वेदनीय के दो ही है, साता और असाता, उसमें से असाता वेदनीय पाप कर्म है। उच्च गोत्र निज गोत्र में से निज गोत्र वो पाप प्रकृति है। आयु चार प्रकार की है, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, नरकायु, उसमें से नरकायु है वो पाप प्रकृति है। अन्य तीन आयु पुण्य प्रकृति है। नाम कर्म की 50, देखो हमने जो देखे थे ना गति जाति, अभी गति में से नरक गति और तिर्यंच गति, जाति में से पंचेंद्रिय जाति छोड़ो, बाकी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनेंद्रिय, चतुरेंद्रिय जाति सभी पाप प्रकृतियां है। संस्थान में से पहला संस्थान है कौन सा? समचतुरस्र संस्थान, उसको छोड़कर बाकी 5 पाप प्रकृतियां। ये 5 के नाम बताएंगे नलिन भाई?
अवरोध, परिमंडल, स्वाति, मामन,
ये लिखा है। हाँ, मुंडक, देखो निग्रोध, परिमंडल, यहाँ सांतक लिखा है, वही स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। सहनन भी 5, पहले नंबर का वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन को छोड़कर वो पुण्य प्रकृति है, बाकी 5 पाप प्रकृति है। वो वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन, ये हमारे सब नाम और उसका वर्णन हमने देखा था। लिख लो वज्र नाराज के बाद नाराज लिखना चाहिए, 4 ही लिखे क्या उसमें? प्रिंटिंग में रह गया होगा। हिंदी में, हिंदी में आपकी ढूंढारी होगी बे, किसी की हिंदी पुस्तक है? किसी देखो बीच में नाराज चाहिए। अशुभ स्पर्शाधिक 20, अशुभ स्पर्शाधिक 20, स्पर्श के 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, अप्रशस्त विहाय गति। देखो हम पाप प्रकृतियों को गिन रहे, गति में से 2 गति लिए, जाति 4 लिए, संस्थान 5 लिए, सहनन 5 लिए, स्पर्शाधिक उसमें 20-20 दोनों जगह लेना, शुभ में भी 20 और अशुभ में भी। विहाय गति में से अप्रशस्त विहाय गति, अनुपूर्वी में से नरक गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। अब उपघात हमने देखे थे ना, देखो आतप उद्योग तो शुभ होगी, अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, उसमें से मात्र उपघात है वो अशुभ है, यानी पाप प्रकृति है। अब त्रसादी हमने 4 देखे थे, उसमें से स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इसके साथ लेना चाहिए था, ठीक है? हाँ, वो दूसर पहले लिखा हमने, फिर दूसर अशुभ, अस्थिर, दुर्भग, अनादेय और अयशस्कर थे। हम उसको अस्थिर से शुरू कर लें, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, फिर दुस्वर, अनादेय और अयशस्कर। तो 168 में से पाप प्रकृति 100 हो गई, तो पुण्य प्रकृति 68 रह गई। वो कौन कौन सी? घाती में से कितनी है पुण्य प्रकृति? एक भी नहीं। तो अघाती में अभी हम देखेंगे साता वेदनीय, उच्च गोत्र और 3 आयु, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, और नाम कर्म की 63। गति में से 2 गति, 2 गति तो अशुभ थी यानी पाप प्रकृति थी, ये पुण्य प्रकृति है। कौन सी? देवगति और मनुष्य गति। पंचेंद्रिय जाति, 5 ही शरीर प्रशस्त प्रकृति यानी पुण्य प्रकृतियां, पांचों ही बंधन और पांचों ही संघात, तीनों अंगों का। अभी संस्थान में से समचतुरस्य संस्थान, सहनन में से वज्र शुभ नाराज सहनन और शुभ स्पर्शादि, वहां हमने अशुभ लिए थे, यहाँ शुभ लिए सब। प्रशस्त विहाय गति, देवगत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु परघात और उच्छ्वास। एक उपघात ऊपर लिया था ना हमने, चार में से चार की जोड़ी की थी हमने। आतप और उद्योग दोनों ही प्रशस्त है, यानी पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर निर्माण, त्रस बादर पर्याप्त, उन्होंने प्रत्येक बाद में लिया। अब उन्होंने क्या लिखा उसको पढ़ेंगे। सुस्वर प्रत्येक, शुभ स्थिर, सुभग आदेय और यशस्वी। इन विषय बंध योग्य प्रकृति 120 है। देखो एकदम 120 कैसे किए, तो 168 का हिसाब पहले बता रहे। ये 20 स्पर्शादि 20 है ना, उसके बदले स्पर्श की 8 वगैरह वगैरह हमने देखी थी। मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण कहेंगे तो 20 के बदले 4 हो जाएगी।
14-16
ये भी 16 नहीं, वो भी 16 नहीं, 32 तो वो कम हो गए। शरीर बंधन और संघात एक एक उनका नाम समान है। मांत्रिक 15 के बदले केवल शरीर में उसको गर्भित करेंगे तो 10 वो कम हो गए। तो पहले हमने देखे थे ना, पहले 36 कम कर दिए थे हमने, 32 और 32 और वो दो बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, यानी 36 कम करेंगे वहां। समझ में आई बात।
16 और
20 करेंगे देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण बस इतना ही कहेंगे, उसमें शुभ शुभ भेद नहीं डालेंगे। तो हमने 20 और 20 40 के बदले 4 ही लिए, यानी 36 कम कर दिए। और शरीर बंधन संगत में वो 10 कम हो गए, तो 46 कम किए। 168 में से 46 माइनस कर 122 रह गए, तो उसमें से बंध योग्य प्रकृतियां तो 120 है। तो कहते इनमें से बंध योग्य प्रकृतियां 120, क्योंकि उसका बीच वाला हिसाब नहीं बताया डायरेक्ट उन्होंने। ऐसा लगता है ना 168 में से 20 120 ही बनती है, ऐसा नहीं है। 122 में से 120 बनेगी। मिश्र मुनि और सम्यक्त मुनि प्रकृति इनका बंध हो ही नहीं। उन्होंने यहाँ लिखा है बंधन 5 संघात 5 वर्णादि 16, इन 28 प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, ये बात गलत है। बंध होता है, इनमें गिना नहीं, इसलिए इसको ब्रैकेट करके निकाल देना। देखो मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनीय प्रकृति इनका बंध हो नहीं, इतना रखना है। और ये ब्रैकेट करके निकाल देना, किसको, बंधन 5 संघात 5 वर्णादि 16, इन 28 लिखा है ना, ये पूरा ही इसको काट दो। हिंदी में इसको करेक्शन नहीं किया क्या उन्होंने, विमला बेन को तो पता था, ठीक है उन्होंने मूल पुस्तक लिखने की दृष्टि से लिखा होगा, परंतु ब्रैकेट में तो लिखना चाहिए। हाँ विमला बेन ने इसका हिंदी किया, उन्होंने कहीं कहीं पूछा भी था, वो शरीर पर्याप्ति के बारे में उन्होंने पूछा था मेरे को। यानी इसमें बंध योग्य दो ही बंध योग्य नहीं है, सम्यक प्रकृति और मिश्र सम्यक मोहनी बनती नहीं, बाकी सभी बनती है। बंधन संघात भी बंधेगी और अन्य भी बंधेगी सब। हाँ हमने हिसाब 122 का लगाया, उसमें से 120 बनती है। हाँ तो आप एक वाक्य ऊपर लिखो, एकदम ऊपर लिखना, 168 में वर्णादि 20 प्लस 20 40 होते हैं, उसके बदले 4 लिए। आप कुछ मत लिखना, आप केवल समझना। हमने 168 गिने थे तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 गिने थे, कौन से, शुभ भी 20 और अशुभ भी 20। उसके बदले केवल स्पर्श रस गंध वर्ण कहेंगे, यानी चार ही गिनेंगे, 40 के बदले चार गिनेंगे, यानी वहां 36 कम गिने,
36
और बंधन और संगात 5-5 वो शरीर नाम कर्म में गर्भित कर दिए, इसलिए वो 10 हमने गिने नहीं। तो 46 बात करने से 122 प्रकृति रहती है और 122 में से मात्र 120 ही बनती है। दो प्रकृतियां बंधती नहीं है, मिथ्या तो प्रकृति में से बाद में तैयार होती है, ये तो मालूम है आपका तो अभ्यास है उसका। अब बंध योग्य जो 120 प्रकृति है उनमें से अभी 100 प्रकृति 120 में से अभी और भी उसका कुछ क्लासिफिकेशन बताएंगे कि अप्रतिपक्षी प्रकृति तो 58 है, इसमें दो भेद करेंगे, प्रतिपक्षी यानी सब प्रतिपक्षी कहेंगे और अप्रतिपक्षी। तो अप्रतिपक्षी प्रकृति तो 58 है, अप्रतिपक्षी का अर्थ क्या है और सब प्रतिपक्षी का अर्थ क्या है? हाँ देखो, या तो साता बनेगी या तो असाता बनेगी, उसको क्या कहेंगे? प्रतिपक्षी कहेंगे। और अप्रतिपक्षी यानी बंधेगी, सभी बंधेगी, उसको कहेंगे अप्रतिपक्षी। ज्ञानावरण के पांचों बंधेगी, ये पहले गुणस्थान से लेकर 10वें तक सभी बंधेगी, तो उसको कोई प्रतिपक्ष नहीं है, आइदर और नहीं बंधेगी, सभी बंधेगी। दर्शनावरण के 9 के 9 बंधेगी, पहले दो गुणस्थान, परंतु है तो वो यानी वो तो अप्रतिपक्षी ही है। अंतराय की 5 के 5 बंधेगी और मोनी की 19 है, मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा। नाम कर्म की 16 प्रकृतियां, अब इन्होंने वो अप्रतिपक्षी में भी और ध्रुवबंदी में भी सब सब ले लिए उनको एक साथ। एक्चुअली ये तो वैसे ठीक है, अलग टाइप से उन्होंने क्लासिफिकेशन लिया है। नाम कर्म की 16 कौन से लिए? अगुर लघु, निर्माण, तेजस कारमाण, स्पर्श रस गंध वर्ण, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, तीर्थंकर और आहारक द्वीप। वो प्रतिपक्षी ने वो बंधेगी परंतु उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है। अभी इसमें से जो है ना, नाम कर्म की जो बताया ना, तेजस कारमाण, स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुर लघु और उपघात निर्माण, यहां तक की जो है ना वो तो ध्रुवबंदी में लेना है, वो तो हमेशा बंधेगी। परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, तीर्थंकर, आहार बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी, परंतु उनके प्रतिपक्ष नहीं है, बंधे तो बंधेगी, नहीं तो बंधेगी नहीं, बस इतना ही। उसमें उपघात तो हर समय बंधेगी, वो तो निरंतर ध्रुवबंदी में,
निरंतर बंदी नहीं,
निरंतर बंदी अलग बात है और ध्रुवबंदी अलग बात है। निरंतर बंदी की डेफिनेशन ऐसी कि मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंदेगी ही बंदेगी, और ध्रुवबंदी का अर्थ होता है अपने विच्छित तक बनती रहेगी।
तो ये 16 में से कितनी ध्रुवबंदी है?
16 में से देखो, नाम कर्म की हमने देखी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो टोटल कितनी है ध्रुवबंदी, टोटल 47 है। ऊपर हमने 19 देखी, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, 19 हुई, मिथ्या तो 16 कषाय भय जुगुप्सा 19 हुई, 38 हो गई, और ये 9, ये 47 प्रकृति ध्रुवबंदी है, यानी हर समय बनती रहेगी। हाँ, यानी पहले गुणस्थान वालों की तो सभी 47 बंदेगी बंदेगी, और आगे वाली उन्होंने जो बताई है ना परघात वगैरह, वो बंदेगी तो बंदेगी, नहीं तो नहीं बंदेगी।
उसका क्या नाम है?
एक्चुअली इन ध्रुवबंदी को अलग निकालेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग है उसमें से सब प्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष निकाल, परंतु इन्होंने अलग इनको भी प्रतिपक्ष में ले लिया है। ठीक है, आयु चार, इनका लार ही बंद होए और लार बिना भी बंद होए, यानी साथ भी बंद बनते हैं और बिना भी उसके कोई नियम ना है। यानी अभी इनमें जो हमने 47 देखी वो ग्रोहबंदी है, ग्रोहबंदी कहेंगे उसको। यानी इनके साथ आयु का बंध होगा भी या नहीं भी होगा। गौरी प्रतिपक्षी प्रकृति 62 है, वेदनी की 2, साता या असाता, गोत्र की 2, उच्च और नीच गोत्र, मोहनी की 7, ऊपर हमने 19 देखी थी। हाँ, कौन सी हास्य रति अरति शोक, यानी हास्य रति या अरति शोक, और 3 वेदों में से 1 वेद का बंधन। नाम कर्म की 51, यानी 4 गति में से 1 गति बंधेगी, तो गति 4, जाति 5, शरीर 2 ही लिए, कौन से 2 प्रतिपक्षी वाले, कौन से 2 होंगे? उदारिक बंधेगा या वैकरिक बंधेगा? देखो तेजस कारवां तो हर समय बंध रहा है, आहार तो मुनि राजाओं के बंधेगा, तो इन दोनों में से 1 बंधेगा। जो मनुष्य गति तिरंच गति बांध रहे हैं उनको औदारिक शरीर बंधेगा, देव गति नरक गति बनते हैं उसके साथ वैकरिक शरीर बंधेगा। तो इसलिए शरीर 2 लिए, उसी नाम के अंगोपांग भी 2, औदारिक अंगोपांग या वैकरिक अंगोपांग। 6 संस्थान में से कोई 1 संस्थान बंधेगा, 6 सहनन में से कोई 1 सहनन बंधेगा, परंतु वैकरिक शरीर के साथ सहनन नहीं बंधेगा, औदारिक के साथ बंधेगा। विहाय गति 2, अनुपूर्वी 4, जैसे गति देखे वैसे अनुपूर्वी, फिर बादर और सूक्ष्म, त्रस और स्थावर, पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी आयदर और कोई बंधेगी ना, सुस्वर या दुस्वर, प्रत्येक या साधारण, शुभ या अशुभ, स्थिर या अस्थिर, बनते समय स्थिर या अस्थिर बंधेगी, उदय में तो दोनों एक साथ होगा, सुभग दुर्भग, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति। इन विषय यानी इनमें से वेदनीय, गोत्र, रति अरति, हास्य शोक, 3 वेद, गति जाति शरीर अंगोपांग, संस्थान सहनन, विहाय गति अनुपूर्वी और दशद्विक, दशद्विक यानी 10 युगल है, यानी त्रसादि 4 और स्थिरादि 6, 10 युगल है, द्विक यानी युगल, यानी त्रस मादर पर्याप्त प्रत्येक या उसके अपोजिट, स्थिर शुभ शुभ सुस्वर आदेय यशस्वी, ये 6 यानी पहले 4 और ये 6, यानी 10 युगल है। इनमें से एक एक ही का बंद होए ताते प्रतिपक्षी कहिए, यानी इनमें से किसी एक का बंद होता है। अभी हमने जो प्रतिपक्षी देखे, प्रतिपक्षी क्यों कहना कि उनमें से किसी एक का बंद होगा एट ए टाइम, और वो पलट पलट कर बनता रहेगा, जैसे जो विजिस गुणस्थान में जहाँ जो कोई उसका प्रोसेस है वैसा बंधेगा उसका। बहुरी 168 प्रकृति विषय, फिर 168 का हिस्सा बता रहे। जीव विपाकी, देखो ये क्या है, जीव विपाकी यानी जीव में जिसका फल मिलेगा। पुद्गल विपाकी 2 प्रकार है एक्चुअली, अभी उसमें क्षेत्र विपाकी भी है और बहु विपाकी भी है, यहाँ क्या कहते हैं देखेंगे। तहा जीव विपाकी प्रकृति 78 है, 3 विषय घातिया की तो सर्व 47, क्योंकि उसका फल यानी उसका जो निमित्त पना बनता है ज्ञानावरण का ज्ञान गुण के साथ, दर्शनावरण का दर्शन गुण के, तो जीव के गुणों के साथ उसका निमित्त बनता है। वेदनी की दो, वेदनी का भी सुख दुख में निमित्त है, तो जीव के गुणों के साथ उसका निमित्त बनता है, इसलिए उसको भी ले लिया। गोत्र भी वो जीव के, अभी उसके गुण है परंतु जीव को उसका फल मिलता है ना, उच्च गोत्र नीच गोत्र। और नाम कर्म की 27 ली, 27 गति 4, जाति 5, विहार गति 2, श्वासोच्छ्वास, तीर्थंकर, त्रस स्थावर, बादल या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त। देखो प्रत्येक और साधारण को नहीं लिया, वो शरीर में जाएगा उसका फल, सुस्वर या दुस्वर, सुभग दुर्भग, आधे अनादे, यशस कीर्ति और यशस कीर्ति, इनका उदय जीव की अवस्था विषय हो, ताते जीव विपाकी कही है। अब पुद्गल विपाकी प्रकृति व्यासी है, वैसे वो भी शरीर में जाता है, सुस्वर दुस्वर भी ध्वनि में आवाज में चला जाएगा। अभी इन्होंने कुछ अलग से ही क्लासिफिकेशन किया है। पेज नंबर 21 नीचे से तीसरी लाइन, हिंदी में वही नंबर है ना, 21 पे। शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, यानी आकार संबंधी है ना, सहनन 6, ये तो हड्डी संबंधी, शुभाशुभ वर्णाधिक 40, यानी शुभ भी और अशुभ दोनों को ले लें, अगुरु लघु यानी शरीर हल्का भारी नहीं होता वो, उपघात यानी अपना ही घात करे ऐसे अवयव होते हैं, परघात यानी दूसरों का घात करने वाले अवयव, आतप उद्योग निर्माण, प्रत्येक साधारण, सिर सिर, शुभ अशुभ, इनके उदय विषय, जीव संबंधी पुद्गल ही परिणवे है, यानी जीव के संबंध में जो पुद्गल है वो इस रूप से परिणत होता है। तात इनको पुद्गल विपाकी कहिए हैं। इन कर्मन के उदयतः शरीरादिक प्रभाव निपजे है ऐसा जाना। ये शरीर की उत्पत्ति होती है इसलिए उसमें ये सब ले लिए नियमित रूप से। आयु कर्म 4 प्रकार है, सो भव विपाकी लिखा है इन्होंने, इनका उदय भव विषय ही है। अनुपूर्वी 4 प्रकार की है, सो क्षेत्र विपाकी है, इनका उदय क्षेत्र विषय ही है। ऐसा इन कर्मन का जीव पुद्गल विषय भाव उपजावने का नेम यानी नियम जानना। ये तो अपनी तो बात भावों की चल रही है, परंतु यहाँ कर्मों का उदय कैसे कैसे निमित्त बनता है, इसलिए इतने डिटेल में, इतने विस्तार में उन्होंने कर्मों का यहाँ वर्णन किया। इति श्री भावदीपिका ग्रंथ विषय तृतीय कर्माधिकार समाप्त हुआ। देखो विशेषो बलवान भवित, ये समय ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। किसको लिखते हैं? द्रव्यानियोग का जो पक्षपाती है, पक्षपाती है नहीं, द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है, बस उसको जानो और आत्मा में लीन हो जाओ और बस बाकी कुछ मत करो, ऐसा कर्णानियोग का निषेध करने वाले के लिए कहते। क्या कहते? हे सूक्ष्माभास, उन्होंने आगे बुद्धि भी लिखा, हे सूक्ष्माभास बुद्धि, तूने कहा वह सत्य है। क्या कहा था उसने? कि बस आत्मा में लीन हो जाओ, बस उसी का स्वरूपानुभव में आनंद होकर रह जाओ, किंतु अपनी अपनी अवस्था देखना, यानी हम किस भूमिका में, उसको तो देखो आत्मा का अनुभव तो है नहीं है और यहाँ निषेध करता है। जो स्वरूपानुभव में वो भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर रहता हो तो अन्य विकल्प क्यों करना, तो जरूरत नहीं है अगर वो सतत रहता है। वहां ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर संतुष्ट होना, किंतु निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग रहता ही नहीं, भले समय दृष्टि भी हो जाए और चौथे गुण स्थान वाला हो पांचवे वाला हो, निरंतर उपयोग तो आत्मा में नहीं रहता है, उपयोग अनेक अवलंबनों को चाहता है। अनेक यानी अलग अलग चीजों को जानना चाहता है, इधर से उधर उधर से उधर उपयोग भटकता रहता है। अतः जिस काल वहां उपयोग न लगे, वहां यानी कहां आत्मा में, तब गुणस्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास करना, ये डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ तो उसको प्रमेय चाहिए, कोई अवलंबन चाहिए ज्ञान को। तूने कहा जो अध्यात्म शास्त्र का ही अभ्यास करना युक्त है, किंतु वहां भेद विज्ञान करने के लिए स्व पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है। द्रव्यानुयोग में तो ये स्व और ये पर इतना ही बताया है, तो पर के डिटेल जाने बिना स्व और पर में भेद कैसे करेगा? और विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट नहीं होता। विशेष यानी डिटेल में जाने बिना ये सामान्य के जो स्व को और पर को भेद कर रहे हैं उसमें बन नहीं सकता। इसलिए जीव और कर्म का विशेष, विशेष यानी डिफरेंस, उसका विस्तार अच्छी तरह जानने से ही स्व पर का जानना स्पष्ट होता है, उसमें भेद करना और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उस विशेष को जानने के लिए, विशेष को यानी डिटेल जानने के लिए, इस शास्त्र का यानी करणानियों का अभ्यास करना, कारण सामान्य शास्त्र से शास्त्र विशेष बलवान है। यानी जो सामान्य जो कुछ कथन होता है उससे जहां विशेष विस्तार से कथन किया जाता है वो अधिक कार्यकारी, बलवान यानी अधिक कार्यकारी। वही कहा है सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, यानी सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र यानी जो वहां विस्तार है वो अधिक कार्यकारी है, अधिक उपयोगी है। यही हम रुकेंगे, कल अभी औदयिक भावाधिकार शुरू करेंगे चौथा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सनादेत हो।